बहुत ही अच्छा परिचय दिया है, जिसका मैं एक अगर मैं अर्थ निकालना चाहूँ तो वो यही है कि हम अपने कर्म से जो है बहुत कुछ जो है अपने हाथ की लकीरें जो हैं वो बदल सकते हैं। यही हर एक जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें दी गई है बात कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हम कर्म भी जो करते हैं वो किसी फल को ध्यान में रख के ही करते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, आप कभी घर आते हैं और आपको बहुत भूख लगी होती है, जैसे आप कभी स्कूल से आएंगे या आप कभी बाहर से आएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इतनी भूख लगी होती है कि आपसे रेजिस्ट नहीं किया जाता, तो उस समय आप जो भी कर पाते हैं अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए आप वो करते हैं। चाहे आप रेडीमेड फूड खाएं, चाहे आप बना के फूड खाएं, उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि मैं थक के आई हूँ या थक के आया हूँ तो मैं नहीं बना सकता। तो दैट मीन्स आप मोटिवेटेड हैं कर्म करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी नीड को सेटिस्फाई करना है। ये तो एक फिजियोलॉजिकल नीड होगी। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे कि हमने कहा कि कई बार हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, जो कि आपने कहा कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है वो मनुष्यों के कर्मों के द्वारा ही घटित हो रहा है, तो वो चाहे कुछ भी है, अच्छा हो रहा है तब भी, बुरा हो रहा है तब भी, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि वैल्यूज़ जो होते हैं हमारे जीवन में वो किस तरह से मोटिवेशन से रिलेटेड होते हैं। तो हम आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या क्या है जो हमें किसी एक डायरेक्शन में लेके जाता है, एक प्रेरित करता है कि मुझे इस तरह से काम करना है। क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं? तो इसमें हम लोग पहले तो जानना चाहेंगे कि मोटिवेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे अलग अलग तरह के जो प्रेरणा स्रोत या मोटिव्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फिर हम एक इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी क्या होती है, फिर हम लोग बात करेंगे कि आप सेल्फ एफिकेसी मतलब अपने बारे में आपकी क्या समझते हैं, सेल्फ एफिकेसी क्या है, लाइफ गोल्स उसके अकॉर्डिंगली कैसे जो है बनते हैं वो है, और कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन की भी हम लोग जो है वो बात इस विषय पे आज करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने वैसे तो हम इस विषय पे ऑलरेडी बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही, लेकिन अगर मोटिवेशन की हम बात करें तो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक को लिया जाता है। जैसे कि आपने कहा कि कभी हम लोग अपने जीवन में कुछ लोग जिनको पढ़ने की रीडिंग हैबिट होती है, जैसे आपको है शायद, तो उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं, तो कभी आप जीवन में बहुत लो फील करते हैं तो वो बुक्स जो हैं वो आपको सेल्फ मोटिवेट जो हैं वो करती हैं, अलग अलग तरह के आपको रीजंस देती हैं कि आपको क्यों जीना चाहिए, जीना क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, और नेगेटिविटी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कई बार आपने आजकल देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड जो है आपका जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इस पर है। तो कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन जो बहुत इज़ दी मोस्ट टॉक्ड ऑफ टॉपिक टूडे इन साइकोलॉजी, ये रेफर करता है कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को किसी एक डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मैं ये मान लूँ कि कोई बच्चा जो है वो बहुत हार्डवर्क कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या है? कुछ भी मोटिवेशन हो सकती है। उसके पीछे मोटिवेशन ये भी हो सकती है कि वो अच्छे मार्क्स लेने के लिए पढ़ रहा है, उसके पीछे मोटिवेशन ये भी हो सकती है कि उसे कुछ वो जीवन में कुछ बनना चाहता है, उसके पीछे मोटिवेशन ये भी हो सकती है कि वो उसके पेरेंट्स ने उसको कैसे मोटिवेट किया या उसकी फैमिली की क्या नीड्स हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं। जो भी ह्यूमन के अगर हम बात करें बिहेवियर्स की, तो वो किसी ना किसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो उसके रिस्पॉन्स में जो है हम कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं। बिहेवियर्स जो होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो आपका पर्पस और गोल क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी तरफ आप काम करते हैं और प्रेरित रहते हैं और उसी दिशा में जो है आप बढ़ते रहते हैं। तो जिस तरह से आप उस पर बढ़ रहे हैं दैट मीन्स अपने गोल को अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड हैं, प्रेरित हैं, और उस डायरेक्शन में आप जो है वो काम कर रहे हैं। हम ये बताते हैं कि जो बिहेवियर्स हैं वो किस वजह से पैदा होते हैं, कि किसी तरह के मोटिव्स जब अराउज होते हैं, मतलब अराउज कैसे भी हो सकते हैं, किस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको बहुत भूख लगी है the motive is that time to satisfy your hunger. तो वो एक motive है कि एक need arousal हुआ, एक physiological arousal हुआ, और उस arousal को fulfill करने के लिए आप खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे, चाहे ही आप कितने भी थके हुए हैं. तब आप ये नहीं सोचेंगे कि आप थके हुए हैं और थक हार के आए हैं तो मैं काम नहीं करूँगा, बल्कि आप उस time अपने need को satisfy करेंगे, hunger need को. उसी तरह से साइकोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं. साइकोलॉजिकल मोटिव्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. एक तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बच्चे कैसे प्रेरित जो हैं रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था. उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है कि वो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं. लेकिन उसके साथ एक ये रीज़न भी हो सकता है. आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे आजकल इस बारे में बात भी बहुत होती है, बहुत सारे लोग जो हैं मिडिल एज में जब आते हैं 35-36 साल की उम्र में, तो वो लोग सोचते हैं जो आपका उस टाइम वो सोचते हैं कि मुझे अपना करियर चेंज करना है. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक कंप्लीट करियर टर्नओवर जो है वो इस समय पे लेते हैं. तो वो किस वजह से लेते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. लेकिन आप ये समझिए कि अगर हम लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करें तो 35 साल तक आ जाना और 35 साल के बाद जब आपके यूजुअली लोगों की जो होती है एक वेल सेटल्ड फैमिली होती है, उसके बाद भी कई लोगों को मैंने देखा है जो अपना एक काम बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ के दूसरे नए काम को पकड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कई बार क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते, सिर्फ अपनी खुशी उनको नहीं मिलती वो काम जो वो कर रहे हैं वो करने के लिए. तो हम अपने अलग अलग गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं. वो स्टिमुलस जो होता है वो एनवायरनमेंट में भी रहता है कई बार, और कई बार जो होता है हम साइकोलॉजिकली भी जो है मोटिवेटेड रहते हैं. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को हमेशा नहीं पता होता कि वी आर नॉट ऑलवेज अवेयर ऑफ आर मोटिव्स. हमें हमेशा नहीं पता होता कि मैं ये काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ. जैसे कि कई बार हम लोग जो होते हैं ना किसी पे गुस्सा करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है, कई बार हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड इट. कई बार अनकॉन्शियस जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो वी आर नॉट ऑलवेज अवेयर ऑफ आर मोटिव्स एंड हाउ वी आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो मैं समझती हूँ कि मोटिवेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है ये सफाइस करती है कि हम कैसे बताएंगे कि मोटिवेशन क्या होती है. देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि मोटिवेशन में हमें क्या क्या चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपना एक रोल प्ले करती हैं जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स में जब हम बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे नीड्स एंड मोटिव्स की. अब नीड्स का क्या मतलब होता है, ज़रूरत का क्या मतलब है. ज़रूरत का मतलब है, ज़रूरत का इन इट सेल्फ मतलब है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है. वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो पैसा भी हो सकता है, वो गाड़ी भी हो सकती है, वो मकान भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है. ठीक है, तो नीड इज़ दी लैक और डेफिसिट ऑफ समथिंग जो कि आप कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो उसको फुलफिल करें, ताकि हम एक होम्योस्टेसिस में बैलेंस में मेंटेन करें. क्योंकि हम खाना खाएंगे तो होम्योस्टेसिस में आ जाएंगे, हम बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और हमारी जो नीड ऑफ हंगर है वो ख़त्म हो जाएगी. जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फिजियोलॉजिकल नीड्स की जब हम लोगों ने बात करी थी, जैसे खाना है, पानी है, ये कुछ हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं. एग्जाम्पल्स हैं कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स के. और नीड फॉर एक्सकर्शन, यूरिनेशन, जो भी आप फ्रेश होते हैं ये भी आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स आता है. और कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो कि सोशल नीड्स होती हैं. जिस सोशल नीड्स का मतलब है, जैसे कि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप हम ज्वाइन करते हैं, तो मतलब हमने वो ग्रुप क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज वी हैव अ नीड फॉर एफिलिएशन. एफिलिएशन का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने ग्रुप ज्वाइन किया. तो दैट मीन्स वी वर मोटिवेटेड टू एग्जिबिट अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर. द बिहेवियर इज ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप. और उसके पीछे हमारी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि हमें नीड फॉर एफिलिएशन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. कुछ लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट होता है. नीड फॉर अचीवमेंट मतलब कुछ लोग हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो पाने की इच्छा होती है, तो उसको पाने की इच्छा के लिए, आगे बढ़ने की इच्छा में वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं. आप उनका कभी भी मोरल किसी भी समय पे डाउन जो है वो नहीं देखेंगे. तो ये होती है आपकी सोशल नीड्स. फिर हमारी जो नीड्स हैं उनको ब्रॉडली आप कैटेगराइज कर सकते हो, प्राइमरी नीड्स या फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स, और सेकेंडरी नीड्स या फिर सोशल नीड्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी नीड्स का मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंडिविजुअल के लिए सर्वाइव करने के लिए, कि खाना खाए, हम लोग पानी पिए, या कुछ भी हमारे फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम पूरा करें. जो मोटिव है वो रेफर करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, मोटिव मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. आपके सामने एक एम है, एक गोल है, उस तक पहुंचने के लिए आप किसी तरह का एक आपका डायरेक्शन है लाइफ में, एक मोटिव के साथ आप जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं. दूसरा है, ये तो है नीड्स की बात हम लोगों ने की, कि नीड्स और मोटिव्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अब गोल्स, गोल्स की क्या इंपॉर्टेंस है. अब जैसे कि हम लोगों ने बोला कि मैंने शुरू में बताया था कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा ना रख, लेकिन हम लोग हमेशा एक फल को, एक मोटिव को, एक गोल को ध्यान में रख के ही तो कर्म करते हैं ना. क्योंकि अगर आई एम एमलेस, आई डोंट हैव एनी एम इन माई लाइफ, किसी भी तरह का नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एम ज़रूरी यही है कि मुझे पास ही होना है, या वो मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पास होना है, या मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो जो है कुछ बनना है. मैं शायद इसलिए भी पढ़ सकती हूँ क्योंकि मुझे मुझे सीखने की इच्छा है. ठीक है, तो आई नीड टू हैव सम गोल इन माई माइंड सो दैट माई बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट गोल. अब अगर मैं मुझे कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज में जाने के लिए अगर मुझे MBBS में एडमिशन लेना है, तो MBBS में एडमिशन लेने के लिए मैं सिंगिंग पे तो नहीं ध्यान दूंगी ना. मतलब जो हमारा, हमको किस तरफ जाना है, उस तरफ हमारा गोल कैसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैसा होगा वो डिफाइन करता है कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है. अब है इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स भी मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. अब इंसेंटिव्स, जैसे आपने, मैं छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक का एग्जाम्पल दे सकती हूँ. छोटे बच्चे, जैसे आपने कई बार देखा होगा, उनको अच्छा और बुरा के बीच में आप फ़र्क कैसे सिखाते हैं. छोटे छोटे आप बच्चों को कहिए कि आज तुमने ये चीज़ अच्छी करी है, मैं तुम्हारे हैंड्स में तुमको स्टार्स दूंगी. बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. तो वो स्टार लेने के एवज़ में जो है वो बच्चे अच्छा जो है बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टार मिलना बहुत बड़ी बात है, मेरी अप्रिसिएशन हुई है. तो इंसेंटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, कि वी आर समटाइम्स मोटिवेटेड टू गेट इंसेंटिव्स. उसी तरह से अगर हम बड़ों की बात करें, तो कुछ लोग जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंसेंटिव्स मिलेंगे, उनको सैलरी के साथ प्लस एडेड बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहता है. तो इस इंसेंटिव्स के लिए भी हम लोग जो हैं हमेशा बहुत बार मोटिवेटेड रहते हैं. फिर हम लोग बात करते हैं इंस्टिंक्ट्स की. इंस्टिंक्ट्स एक्चुअली एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है. अगर हम मोटिवेशन की बात करें, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें कई बार हमें प्रीडिस्पोज्ड होती हैं, जैसे कुछ लोगों से, कुछ तरह की सिचुएशन से, या कुछ तरह के जानवरों से हम हमेशा से वैसे ही डरते हैं. इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर, हमें लगता है कि इससे डरना चाहिए. पर ये बिहेवियर की, जब हम इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर की बात करते हैं, तो ये आजकल ज़्यादातर जो है वो जो आपका एनिमल बिहेवियर को जब आप बताते हैं, तो एनिमल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए ज़्यादा जो है उसको हम इंस्टिंक्ट्स की जो है वो बात करते हैं, कि एनिमल्स या बर्ड्स क्यों मोटिवेटेड है. जैसे आपने ये देखा होगा कि कुछ तरह के जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एग्स को कैसे रखते हैं नेस्ट में. उन्हें पता है कि कैसे रखना है, कैसे उनको बचाना है. तो ये अब वो किसी स्कूल में जाके तो सीख नहीं रहे हैं, बट दैट इज़ देयर इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर. वो अपने आप ही ये सब चीज़ें जो है वो सीखते हैं. तो इंस्टिंक्ट्स एक अनदर इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है जिसकी हम मोटिवेशन में बात करते हैं. अब हम लोग आते हैं इस पे, जो टाइप्स ऑफ मैंने कहा था कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स की बात करूँ, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी और फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और सेकेंडरी और सोशियो साइकोजेनिक नीड्स, जो कि हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं. मतलब हमारा किस तरह से हम डिफर करते हैं. प्राइमरी नीड्स जो कि हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिसे हम हंगर, थर्स्ट, सेक्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप और पेन, ये मतलब इनसे हम, इन चीज़ों से, इन चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग किस तरह से मोटिवेटेड रहते हैं. और सोशियो साइकोजेनिक नीड्स, जैसे कि कुछ लोगों के लिए नीड फॉर एफिलिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे. कुछ लोगों के लिए कुछ और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका जो मोटिव है वो किसी और, उनका जो बिहेवियर है वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा. कुछ लोगों के लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका बिहेवियर कहीं और. तो दीज आर सोशियो साइकोजेनिक नीड्स, जो सोसाइटी में हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विच इज़ अदर देन दी फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो वो है हमारा सोशियोजेनिक नीड्स. देखिए, मैस्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी जो है, उन्होंने एक्चुअली जो फाइव वैसे बेसिक नीड्स की बात करी थी, बाद में उन्होंने सेल्फ ट्रांजेंस भी डाला था. उन्होंने कहा था कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस नीड हायरार्की में जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. डिपेंड करता है कि वो मोटिवेटेड कब होते हैं, जब एक नीड उनकी ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो उसके बाद वो नेक्स्ट इन द हायरार्की जो है उस पे उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए
जी
मोटिवेटेड रहते हैं. अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारा नीड हायरार्की की थ्योरी है उसमें सबसे पहले आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आता है हमारा सेफ्टी नीड्स, फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, उसके बाद एस्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स और सेल्फ ट्रांसेंडेंस नीड्स. अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करूँ, मैं सीधे अक्षरों में बोलूँगी रोटी कपड़ा और मकान. इंडिविजुअल सबसे पहले जो है वो इन चीज़ों को पाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो मोटिवेटेड रहता है. जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है उसको कपड़े पहन उसको शानो शौकत से कोई मतलब नहीं है, ना उसे इस बात से मतलब है कि मेरे कितने दोस्त हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि उसका फर्स्ट नीड है रोटी कपड़ा मकान. फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो हमारी हायरार्की में जो है सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स हैं, सबसे पहले आती हैं. ये सबसे मोस्ट पोटेंट और लोएस्ट लेवल्स हैं हर एक नीड का. तो जैसे कि नीड फॉर हंगर हुआ, थर्स्ट हुआ, सेक्स हुआ, टेम्परेचर रेगुलेशन हुआ, ये सब सारी नीड्स जो हैं, जो आपका हायरार्की का लैडर है उसमें सबसे नीचे आप इन्हें पाएंगे. मैस्लो का ये कहना था कि जब फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो बहुत समय तक डिप्राइव जो हैं वो रहती हैं, तो बाकी सब नीड्स जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता. क्योंकि जिस इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है उसको सेल्फ एस्टीम नीड से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जिए. पहले जीने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है. हम बहुत समय तक खाने के बिना रह सकते हैं पर हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नीड है. अब हमारा जो सेक्स नीड है वो डिफर करती है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हंगर नीड से. सेक्स एक्चुअली में इट इज़ नॉट दैट वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. स्पीशीज रहे उसके लिए सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है. तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और हमारे लोअर ऑर्डर नीड्स सबसे नीचे हायरार्की में आती हैं. अगर ये नीड्स बहुत समय तक फुलफिल ना रहें और कोई इंडिविजुअल इन नीड्स से डिप्राइव्ड रहे, तो जो ऊपर की आगे वाली नीड्स हैं उनका कोई मायने नहीं रह जाते. फिर हमारी आती हैं सेफ्टी नीड्स. अगर हम सेफ्टी नीड्स की बात करें तो जब फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो देन कम्स दी सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी का मतलब हमें लाइफ में सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है उसकी ज़रूरत होती है. तो सेफ्टी नीड्स जो है वो मेनली कंसर्न करती है टू फील सिक्योर, सेफ एंड आउट ऑफ डेंजर, कि हम किसी ऐसे जगह पे हमारा कुछ ऐसा ठिकाना हो. इसीलिए हमारे पास घर होता है, हम घर के अंदर इसीलिए रहते हैं, सो दैट वी हैव अ प्लेस वेयर वी आर यू नो अवे फ्रॉम ऑल द डेंजर्स. तो ये नेक्स्ट लेवल फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद. खाना खाने के बाद और जिससे मैं कह रही हूँ पानी पीने के बाद नेक्स्ट कम्स. इससे आप जी तो लेंगे लेकिन सेफ्टी नीड्स का फिर इम्पोर्टेंस आता है. फिर इंसान अपने लिए घर जैसी चीज़ फॉर एग्जांपल बनाता है. उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स. लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स का मतलब है कि जब किसी इंसान की जो बेसिक दो नीड्स जो मैंने कही, जो सेफ्टी नीड्स हैं और जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, वो फुलफिल रहती हैं, तो हर एक को मन होता है कि उनके पास इंटीमेट फैमिली मेम्बर्स हों, एक परिवार हो जिसमें वो रह सकें. तो फिर इंडिविजुअल अपनी ये नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो है वो अपना सेल्फ एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, जिसमें फैमिली होती है, परिवार होता, आपका परिवार होता है, दोस्त होते हैं, एक सोसाइटी होती है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं. ये नीड्स जो होती हैं ये डिपेंड कर ये नीड्स होती है डिपेंडेंट होती है ऑन द फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स. मतलब मैंने कहा कि ये नीड्स, ये सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो दो बेसिक नीड्स हैं, अगर ये किसी के जीवन में सेटिस्फाइड होंगी तो उसके बाद ही जो आगे की नीड्स हैं वो मायने रखती हैं इंसान के जीवन में, अदरवाइज उनके कोई मायने नहीं होते. जब लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स किसी इंडिविजुअल की सेटिस्फाई हो जाती है, देन कम्स द नीड फॉर दी सेल्फ एस्टीम और एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया है. एक है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिगार्ड. आप किस तरह से अपने लिए एक रिगार्ड चाहते हैं, आपका एस्टीम, सेल्फ एस्टीम कैसे हाई होना चाहिए, आप अपने बारे में क्या समझते हैं, लोग क्या समझते हैं, और आप हाउ डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. दूसरा जो इसमें है वो आता है नीड्स रिलेटेड टू रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. एक तो आप अपने बारे में सेल्फ एंड अदर इज नीड्स दैट आर रिलेटेड टू रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें सेल्फ एस्टीम नीड्स की, तो अगर हमारी कहीं बहुत अच्छी नौकरी है तो वो भी दैट ऑल्सो यू नो ड्रॉज रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. वो दूसरे हमको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. तो दैट इज़ आपका सेल्फ एस्टीम, जो आपका एस्टीम नीड्स है वो फुलफिल हो रहा है. तो जब आपका बिलोंगिंगनेस, जो द थर्ड लेवल इन द फोर्थ लेवल इन द हायरार्की इज़ द एस्टीम नीड्स. फिर एस्टीम नीड्स में अगर अदर टाइप्स ऑफ एस्टीम नीड्स की बात करें तो उसमें नीड फॉर अचीवमेंट, जैसे कि मैंने कहा आप कितना आगे जाना चाहते हैं, टू बी कॉम्पिटेंट, टू गेन अप्रूवल एंड गेट रिकग्निशन फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, वो भी बहुत ज़्यादा रहता है. नीड टू फील सुपीरियर टू अदर्स ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. जब आप कुछ लगता है कि मुझे इससे बड़ा दिखना है, तो दैट इज़ ऑल्सो कि आप जो है अपना कंपेरिजन किसी से कर रहे हो और आप चाह रहे हैं आप इनसे बड़े दिखें, तो दैट मीन्स दैट इज़ अगेन अ नीड फॉर योर फुलफिलिंग योर एस्टीम नीड्स. उसके बाद आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की अगर हम लोग बात करें तो वो रेफर करती है द नीड, द डिज़ायर टू यूटिलाइज वंस पोटेंशियल टू द फुलेस्ट. मतलब आपका जो भी पोटेंशियल है उसको आप पूरी तरह से जो है उसको यूटिलाइज करते हैं. जैसे कि आप बहुत अच्छे लर्नर हैं, तो आप अपनी लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रोडक्टिवली पूरी तरह से कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो दैट कम्स अंडर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ये बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान, वन शुड रियलाइज एंड बी सेटिस्फाइड दैट ही और शी हैज़ अचीव्ड व्हाट वन इज़ केपेबल ऑफ. इसका मतलब ये है कि जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी एक पॉइंट पे आके ये समझ लें कि जो मुझे करना था वो मैं, जो मैं करना चाहती थी वो मैंने अचीव किया लाइफ में. वो आप किसी भी समय करें, कि अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे करें, लेकिन किसी पड़ाव पे आके ये होना बहुत ज़रूरी होता है कई बार हम लोगों के लिए, कि हम लोग ये सोचें कि मैंने कोई कमी अपने आप में नहीं रखी, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया है एंड आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव डन. तो दैट इज सेल्फ, दैट कम्स अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉसिबल तभी होती है जब जब कोई इंडिविजुअल का जो भी उनकी एनर्जी है दैट इज़ नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाई एनी थिंग, और अपनी जो अवेलेबल एनर्जी है उसको वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. जब जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी लोअर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, तभी वो अपने हायर ऑर्डर नीड्स को पे जो है वो बढ़ते हैं. बट यूजुअली ये देखा गया है कि लोग जो हैं वो सेल्फ एस्टीम नीड्स तक ही जो है वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं या वहीं तक रह जाते हैं. लास्ट आता है आपका सेल्फ ट्रांसेंडेंस नीड्स. इसमें वो नीड आती है जिसमें स्पिरिचुअलिटी का सबसे ज़्यादा जो है वो महत्व जीवन में हो जाता है. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होता है, नीड हायरार्की, जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, और इसमें आप कॉन्शियस हो जाते हो ऑफ द ब्रॉडर रियलिटी अराउंड यू, कि मतलब सत्य क्या है. ये आपको एज पर मैस्लो, अगर मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जीवन का सत्य क्या है, वो सेल्फ ट्रांसेंडेंस नीड्स जो है वो हमें बताती है. इस नीड की जब हम लोग बात करते हैं तो स्पिरिचुअल कंसर्न जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इस हायरार्की में ये हमेशा एज्यूम हम लोग करते हैं, अगर हम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की बात करें, कि जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं वो डोमिनेट करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को अनटिल वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड जो है हो जाएं, और उसी के बाद जो है इंडिविजुअल आगे नीड्स के लिए जो है वो प्रेरित रहता है. लेकिन मैस्लो ये बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो हायरार्की को स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो नहीं करता है. ये एक्सेप्शंस भी अराइज करती हैं, और ये भी डिपेंड करता है आपके लिए किस समय पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. जैसे कि शायद कुछ लोगों के लिए बिलोंगिंगनेस इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो दे नेवर लुक फॉर फैमिली और समथिंग, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एस्टीम नीड्स, तो वो बिलोंगिंगनेस वाली नीड को कभी सेटिस्फाई करने की कोशिश ही नहीं करेंगे. तो एक्सेप्शन हमेशा रहती हैं, बट बेसिक नीड्स जो हैं वो तो रिक्वायर्ड हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए. अगर वो नहीं होंगी तो इंसान का जीवन ही जो है वो पॉसिबल नहीं है. देखिए, जब हम अचीवमेंट मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा पाने की इच्छा में हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं. ठीक है, वो हर एक अराउजल में कह लूँ, वैल्यूज़ कह लूँ या नीड्स कह लूँ, ज़रूरतें जो हैं वो डिफ़र करती हैं, हर एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, चाहे वो उनके सोचने के तरीके में, चाहे वो उनकी ज़रूरतों के तरीके में हो। तो जो ये एक जो नीड फॉर अचीवमेंट है, कुछ पाने की इच्छा जो है, वो हर एक इंडिविजुअल में जो है किसी न किसी एक्सटेंड तक रहती है। और ये जो एक्सेलेंस कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ, अच्छे से अच्छा मैं कोशिश कर सकूँ, वो मैं करूँ और हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मैं दे सकूँ, ये है नीड फॉर अचीवमेंट। मैं कितना ऊपर तक किसी चीज़ को पा सकती हूँ। जिनमें नीड टू फॉर अचीवमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो लोग हमेशा जो है डिफ़िकल्ट वर्क को जो है वो अपटेक करते हैं और अपनी टास्क परफॉर्मेंस पे हमेशा इम्प्रूव करते हैं, हमेशा सीखते हैं और आगे इम्प्रूव करते हैं। वो हमेशा टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं और वो प्रेफर करते हैं टू वर्क ऑन टास्क दैट आर चैलेंजिंग, जो जिसमें उन्हें मज़ा आए। कुछ ऐसी चीज़ वो करते हैं जिसको करने से उन्हें लगे कि, अगर मैं इसको एक उदाहरण के स्वरूप एक्सप्लेन करूं तो कहने का मतलब है कि जितना चैलेंजिंग टास्क उनके सामने आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जितना चैलेंज अगर मैं किसी टीचर को कर दूं कि ये बच्चा जो है वो थोड़ा टफ चाइल्ड है तो इसको आपको पढ़ाना है, तो जितना चैलेंजिंग टास्क उनको देंगे उनको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो टफ से टफ चीज़ जो है वो अपने लिए लेना चाहते हैं, जिनमें नीड टू अचीवमेंट जो है वो हाई होता है। अगर हम लोग बात करें अचीवमेंट मोटिवेशन की, तो इसको बहुत सारे एरियाज़ में हम देख सकते हैं, जैसे कि जॉब पे आप देख सकते हो, मैंने किसी एक टीचर का एग्जांपल दिया। अगर आप स्कूल की बात करो, स्कूल में देख सकते हो आप, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में नीड टू अचीवमेंट देख सकते हो। जो आपके डिफरेंसेस रहते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस में, वो कहीं ना कहीं आपके नीड टू अचीवमेंट जो है उसके साथ रिलेटेड रहते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको नीड टू अचीवमेंट में उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जब पेरेंट्स उनके छोटे छोटे जो स्टेप्स बच्चे लेते हैं या छोटे छोटे काम जो करते हैं, जब उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो नीड टू अचीवमेंट उनका हाई रहता है, वो प्रेरित रहते हैं आगे करने के लिए। और अगर इसका नेगेटिव हो तो उसके इफ़ेक्ट्स भी जो है वो ऑपोजिट जो है वो रहते हैं। अगर मैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेंटिव्स, या जैसे कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी, ठीक है, तो वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर कुछ है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है। एक होते हैं इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि मैं अपनी लाइफ में इतना कमा रही हूँ कि ठीक है, काम सही से चल रहा है और मुझे पैसों की ऐसी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे जीवन में कुछ अलग करना है, इस चीज़ के लिए मैं नहीं बनी हूँ, दो मेरी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है नहीं, मुझे कुछ और करना है और उसको करने के लिए मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब कोई बाहर का स्टिमुलस आपको किसी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, पर आपके अंदर से एक भावना आती है कि मुझे तो ये करना है, इससे कोई पैसे मिलेंगे ये मुझे नहीं पता। जैसे आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, तो आप बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि आपको उससे पैसे मिलेंगे, आप इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको सीखने को मिलेगा, बस उसके लिए आप आउट ऑफ द वे जाके भी जो है वो काम करते हैं। मैं कई बार कुछ महिलाओं से मिलती हूँ, जैसे मैं कुछ दिन पहले किसी से मिली, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सब करने का टाइम मिल जाता है, तो उन्होंने बोला बस पैशन है, निकालना पड़ता है, टाइम तो निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो आप करना चाहते हैं ना, उसके लिए फिर आप कैसे भी जो है वो टाइम निकालते हैं, कैसे भी मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको कुछ काम करने से खुशी मिलती है। तो यही डिफरेंस जो है आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में रहता है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं कि मैं हाउ मच सेल्फ एफिशिएंट आई एम टू अचीव समथिंग इन लाइफ। जितना मैं अपने आप की, जितनी मेरा सेल्फ एफिकेसी मैं समझती हूँ कि मेरी हाई है या लो है, उसकी अकॉर्डिंगली मैं हमेशा अपने जीवन में मोटिवेटेड रहूँगी। कुछ लोगों को लगता है कि वो IAS का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इतना दे बिलीव कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो अपनी कॉम्पिटेंस में बिलीव करते हैं, तो वो उस तक पहुंचने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। कुछ लोगों में कैपेबिलिटी होती है IAS बनने की, लेकिन वो सोचते हैं नहीं, मुझ में नहीं है, चाहे उनको आसपास आके लोग बोलें भी कि आप इतने एफिशिएंट हो, अगर आप मेहनत करोगे तो कर लेंगे, लेकिन किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो जो आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने कैपेबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप जीवन में मोटिवेटेड रहते हैं और जो है वो हमेशा अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। देखिए, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसका सीधा से एग्जांपल दूं तो आप जीवन में वही चीज़ करते हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटर वर्क करती हैं। वो किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटर वर्क करती हैं, जैसे कि आपका वैल्यू है घर पे कि आप कितने कितने संस्कारी हैं। तो अगर आपको वो संस्कार हैं, वो रिस्पेक्ट आप दूसरों को देना चाहते हैं, तो यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू बिहेव इन एप्रोप्रिएट मैनर विद अदर्स, अगर ये आपके वैल्यूज़ में है। अगर ये आपके वैल्यूज़ में नहीं है तो आप उस तरह से, आप ऑपोजिट तरह से मोटिवेटेड रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे को एक डायरेक्शन देती हैं कि हम किस तरह के बिहेवियर को एग्जिबिट करने में मोटिवेटेड रहेंगे। कुछ तरह की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको हम जैसे कि पता है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं मॉरल वैल्यूज़ में क्या सही है और क्या गलत है। एक रीसेंट स्टडी हुई थी, उसमें उस शोध के अकॉर्डिंग जो है कुछ कंट्रीज ने डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आइडेंटिफाई की हैं, जैसे कि पहला है पावर। पावर का मतलब है कि हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ सोशल स्टेटस, टू हैव अ प्रेस्टीज। तो आपके लिए जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप उतना ज़्यादा काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का बेटा, कोई अगर अपने आप एक्टर है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उनके लिए शायद कहीं ना कहीं, ये एक एग्जाम्पल है कि शायद कहीं ना कहीं उनके लिए भी वही, बच्चों के लिए भी वही बनना इम्पोर्टेंट हो जाए, क्योंकि उससे पावर आएगी, प्रेस्टीज मिलेगी, सोशल स्टेटस मिलेगा, तो वो उस तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहेंगे। तो पावर इज वन ऑफ द वैल्यू फॉर विच एन इंडिविजुअल बी मोटिवेटेड। दूसरा है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब है कि अगर आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि लर्निंग किसी भी स्टेज पे ख़त्म नहीं होती है, तो जितना हाई अचीवमेंट मोटिवेशन आप में रहेगा उतना ज़्यादा आप उस चीज़ के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपको ग्रेड ए मिल गया तो आप आज काम करना बंद कर देंगे। आपका अचीवमेंट मोटिवेशन हाई रहेगा तो आप हमेशा उस ग्रेड को पाने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए जो है वो मेहनत करेंगे। फिर आता है सेल्फ डायरेक्शन। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है आपका इंडिपेंडेंट थॉट कितना चलता है। मतलब लोगों ने आके कह दिया तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम प्रोफेसर बन जाओ या तुम एस्ट्रोनॉट बन जाओ, दैट डजंट मैटर। व्हाट डज मैटर इज कि आप अपनी सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर आप में कितना है, सेल्फ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, वो आप में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट करेंगे, आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करेंगे। फिर है यूनिवर्सलिज्म, जिसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन, टॉलरेंस एंड प्रोटेक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल अदर पीपल। आप दूसरों का भी वेलफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप हमेशा टॉलरेंट रहेंगे, कभी किसी के साथ जो है वो कुछ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। फिर है बेनेवलेंस इज अनदर वैल्यू। बेनेवलेंस का मतलब है जिन लोगों के, जो लोग आपके सबसे करीब है उनके साथ आप अपने रिलेशनशिप्स को हमेशा बनाए रखने के लिए किस तरह से मोटिवेटेड जो है वो रहते हैं। फिर है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब है कि यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू कैरी ऑन योर ट्रेडिशनल वैल्यूज़। वो कुछ भी हो सकती हैं, वो आपके घर की कल्चर्स हो सकते हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, सोसाइटी का हो सकता है, आपके अपने ग्रुप का रिचुअल्स हो सकता है, तो उनको इंटैक्ट रखने के लिए आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, दैट इज़ वन ऑफ दी अदर वैल्यू। फिर है कन्फर्मिटी, कि आपके लिए दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो अगेन अ मोटिवेटर जो है आपके लिए काम करता है। और लास्ट है सिक्योरिटी, हाउ मच इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इज़ फॉर यू। इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटा सा बात कहूँगी कि फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। फ्रस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, फ्रस्ट्रेशन का मतलब है जब व्हेन वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई आर मोटिव्स। तो एक में एनवायरमेंटल फोर्सेस कैसे हमारी मोटिव्स को रोकती हैं, हमारे पर्सनल फैक्टर्स जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते, और कॉन्फ्लिक्ट जब हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, तो वो भी हमारे मोटिवेशन के लिए हिंडरेंस का काम करते हैं।